اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس رات کے 9, بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی کی طرف سے اسلام آباد پر عائد کیے جانے والے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے ان کی شدید مذمت کی ہے. اس معاملے پر بھارتی الزامات کے بارے میں منگل کی شام گئے ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ الزامات بھارت کی طرف سے نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا ایک بہانہ ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو پاکستانی دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں بھارت کی طرف سے پاکستان پر عائد کیے جانے والے الزامات کو مسترد کیے جانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا. پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو بتایا گیا کہ پاکستان نے نئی دہلی کے فیصلے کے جواب میں اسلام آباد میں تعینات بھارتی سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی بھارت کے ناظم الامور کو 7 روز کے اندر اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس سے قبل بھارت نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی تعداد نصف کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آدھے سفارتی عملے کو 7 روز کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی تھی. بھارت نے پاکستان میں بھی اپنا سفارتی عملہ نصف کرنے کا اعلان کیا تھا. دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے عہدیداروں کے خلاف سفارتی آداب کے خلاف ورزی کے بھارتی الزامات کو وہ پوری طرح مسترد کرتے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں. بیان میں اس تاثر کو بھی مسترد کیا گیا کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو دھمکایا جاتا ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کی طرف سے پاکستان کے خلاف دیا جانے والا غلط تاثر بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کو چھپا نہیں سکتا جن میں بھارتی ہائی کمیشن کے عہدیدار مبینہ طور پر ملوث پائے گئے تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے حالیہ اقدامات بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے جو علاقائی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کی طرف سے سفارتی تعلقات کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا تازہ اقدام اس بات کا اندیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ان کے بقول یہ خدشہ ہے کہ یہ تناؤ بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی نئے تنازع کا سبب بن سکتا ہے. اسی حوالے سے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر بھارت کو متنبہ کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحانہ کاروائی سے باز رہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. بھارت اور چین نے سرحدی کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اس کے باوجود مبصرین کا خیال ہے کہ سرحدی تنازعہ اتنی جلدی اور آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. بھارت کے فوجی حکام نے منگل کو کہا کہ ہم باہمی طور پر متفق ہیں کہ اس کشیدگی کو کم ہونا چاہیے. اس سے پیشتر چین اور بھارت کے فوجی کمانڈروں کے درمیان طویل مذاکرات بھی ہوئے تھے جس کے دوران متنازع علاقوں کے کنٹرول سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی تھی. بھارتی فوجی حکام نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ مشرق لداخ کے تمام متنازع علاقوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور تمام جگہوں پر ایک دوسرے سے متصادم نہ ہونے کے طریقہ کار کو بھی طے کیا جا رہا ہے. تاہم چین اور بھارت نے سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی, لیکن ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان سرحد پر گزشتہ ہفتے جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی اسے کام کرنے کے لیے کچھ پیش رفت ہوئی ہے. بھارت اور چین میں سرحدی کشیدگی کے دوران گزشتہ چند ہفتوں میں ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے. روس میں بھارت کے سفیر وینکٹیش راو ورما اور روس کے نائب وزیر خارجہ ایگور مورگولوف کے درمیان بھارت چین جھڑپ کے 2 روز بعد بذریعہ فون بات چیت ہوئی اور اب روسی وزارت دفاع کی دعوت پر بھی وزیر دفاع راجنات سنگھ ماسکو پہنچے ہیں. راجنات سنگھ بدھ کو روس کی 75ویں وکٹری پریڈ میں شرکت کریں گے. خبریں ختم ہوئیں.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
अस्सलामु अलैकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। आज हम एक बहुत ही संगीन मसले पर बात कर रहे हैं और वो है जबरी मशक्क़त का। पाकिस्तान में जबरी मशक्क़त एक संगीन मसला बन चुकी है। ये मशक्क़त मुख्तलिफ शोबों में ली जा रही है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ज़रई शोबे में ली जाने वाली जबरी मशक्क़त की, जो हारियों से ली जाती है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रीन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के फाउंडर डॉक्टर गुलाम हैदर, जिनकी तंजीम सन 2003 से जबरी मशक्क़त के खिलाफ काम कर रही है, और एक्शन एड पाकिस्तान, ग्लोबल फंड फॉर ह्यूमन राइट्स, नॉर्वे के ह्यूमन राइट्स फंड और सुप्रीम कोर्ट के वकला के तआवुन से अब तक हजारों लोगों को कानूनी तौर पर जबरी मशक्क़त के शिकंजे से आज़ाद करा चुकी है और उनको माशरे का कारामत शहरी बनाने के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गुलाम हैदर साहब।
वालेकुम अस्सलाम
डॉक्टर,
आपके शरीफ हैं।
बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम बिल्कुल ठीक हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो जबरी मशक्क़त का मसला है, उसकी वो किस हद तक किस नौइयत का है?
देखिए, जबरी मशक्कत का इस वक्त जो ज्यादा जो लोग शिकार हैं पाकिस्तान में, उनकी ज्यादा तादाद सिंध में है और वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, और फिर ईंटों के भट्टों पे भी जबरी मशक्कत में फंसे हुए लोग हैं। इसके अलावा फिशिंग में, क्वारीज में, दूसरी फील्ड्स में भी लोग हैं, लेकिन जो ज्यादा तादाद है वो ज़राअत से वाबस्ता जो शेयर क्रॉपर्स हैं, यानी हारी जिनको हम कहते हैं यहाँ पे, वो और भट्टों पे काम करने वाले मजदूर, उनकी तादाद ज्यादा है।
तो इनका ताल्लुक ये कोई अकलियती ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ग्रुप से या सभी ग्रुप से लोग मौजूद होते हैं इसमें?
इसमें ये कोई मखसूस नहीं है, ज्यादातर गरीब लोग ही इसमें फंसते हैं, लेकिन हमने जितने लोगों को आजाद कराया है उनकी अक्सरियत जो है वो मिनोरिटीज में से है। उनमें से ज्यादातर, मतलब जो आजाद कराए उसमें 80% जो है वो हिंदू है, और कुछ फीसद क्रिश्चियंस भी उसमें है, 10-15% ही मुसलमान भी है।
अच्छा, तो ये लोग जब किस तरह ये जबरी मशक्कत के तहत गिरफ्तार हो जाते हैं, कौन इनको गिरफ्तार करता है जबरी मशक्कत में, और क्यों ये होते हैं गिरफ्तार?
इनमें जो सियासी असर रसूख वाले लोग हैं, सियासी बासर कहें, ब्यूरोक्रेट्स हैं और रूहानी पेशवा, पीर वगैरह, इस तरह के लोग।
अच्छा, तो और ये क्योंकि बेचारे गरीब होते हैं, इनको रिहाइश का मसला होता है, तो वो अपने इनके साथ मिलकर इनके जमीनों पर रहकर काम भी करते हैं और उनको रिहाइश भी मिल जाती है। तो फिर इनको आप लोग आजाद कराने के लिए क्या करते हैं, कानूनी जंग किस तरह लड़ते हैं और कौन लड़ता है वो जंग आपकी तरफ से?
देखिए, हमारी तरफ से जो हमारे काउंसल्स हैं, वकील हैं, वो करते हैं ये, और ज्यादातर जो हमारे साथी हैं वो मतलब नॉमिनल फीस लेते हैं, उस पे वो काम करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो बगैर फीस के भी काम करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हम 491 के तहत, सीआरपीसी 491 के तहत डालते हैं किसी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो फिर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ऑर्डर करती है उस एरिया की पुलिस को कि फलां जगह इतने लोग फंसे हुए हैं, आप उनको कोर्ट में पे। फिर जब वो कोर्ट में आ जाते हैं, कोर्ट उनसे पूछती है कि भाई क्या मसला है, फिर कोर्ट ये होता है कि कोर्ट उनको आजाद कर देती है। लेकिन होता ये है कि उनकी जितनी भी मेहनत की हुई, 2 साल 3 साल 5 साल जितने साल भी वो फंसे हैं, उनका कोई हिसाब किताब उनको नहीं मिलता। और अगर जमींदारों का कोई कर्जा है तो उनका भी वो नहीं चलाती,
पुलिस उनको आजाद कराती है। तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं?
लिए हम ये करते हैं कि कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 दिन हम अपने जो हमारे सेटलमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, 2-3 एस्टेब्लिश किए, वहां पे हम उनको रखते हैं 2-3 दिन तक, खाना वगैरह, फिर कोई बीमार है तो उसकी दवाई वगैरह करते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं, ड्रामा का मसला है वो, फिर हम उनके लिए कोई मतलब अच्छा कोई प्रोग्रेसिव बंदा तलाश करते हैं जहाँ पे उनका रोजगार हो सके। कोई लोग ज्यादा अरसा हमारे पास टिके रहते हैं तो फिर हम उनकी तरबियतें भी करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कोई मतलब कोई स्किल डेवलपमेंट जैसे टेलरिंग है औरतों के लिए, या बेकिंग वगैरह का है, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, इस तरह की चीजें वो सिखाते हैं।
तो आपने उनके लिए फिर कोई कानूनी मसाइल के हल के लिए उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह भी आप देखते हैं कि वो उनके पास शनाख्ती
जी
कार्ड हो?
बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हमने जो उनके लिए सबसे अच्छा काम किया उनकी आजादी के बाद का, वो ये है कि हमने उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जो नेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं नेशनलिटी के, मतलब उनका शनाख्ती कार्ड है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है, या वोटर लिस्टों में नाम डलवाना, तो ये काम किया।
ठीक है। अच्छा, और उनकी तालीम के, बच्चों की जो उनके साथ जो बच्चे होते हैं उनकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं जब वो आजाद हो जाते हैं मजदूरी से? तो
2003-04 में हमने नॉन फार्मर स्कूल बनाए जिनमें 750 बच्चों को हमने प्राइमरी एजुकेशन दी।
ठीक है। और आपने उनको प्लाट्स भी लेकर दिए, उन लोगों को रहने के लिए प्लाट्स भी दिए?
1200 फैमिलीज को हमने प्लाट्स दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो एक कुछ उमरकोट पे हैं और कुछ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, कोटड़ी एक जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, तीन जगहों पे हमने 1200 लोगों को रिहायशी प्लाट्स दिए।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर गुलाम हैदर साहब, आप ग्रीन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के फाउंडर हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और अब हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट सईद मिर्जात को, जो अब तक 1,000 लोगों को जबरी मुशक्कत से आजाद कराने के लिए मुफ्त कानूनी मदद फराहम कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त उनके नजदीक ये जबरी मुशक्कत का मसला किस हद तक संगीन है। तो और उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि उनको जबरी मुशक्कत से आजाद कराने के लिए क्या कानून मौजूद है, और उन कवानीन पर अगर वो हैं तो उन पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम सईद मिर्जात साहब।
जी वालेकुम सलाम मैडम।
सईद साहब, आप एक एडवोकेट हैं और आपने बहुत काम किया है जबरी मुशक्कत के लोगों को, जो जिसे बॉन्डेड लेबर कहते हैं, उनको आजाद कराने के सिलसिले में कानूनी चाराजुई के जरिए। तो पहले हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये मसला किस हद तक संगीन है पाकिस्तान में?
बॉन्डेड लेबर वगैरह जो है वो ज्यादातर यहाँ जो है शिद्दत अख्तियार इस वजह से कर गया है कि लोग जो है काफी वो उनको फूड जो है फूड की जो है फूड पे भी वो जो है ना लेबर उनको करना पड़ता है, यानी मजदूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही काफी खेती बाड़ी या जो भट्ठे होते ईंटों के भट्ठे जो होते उनमें काफी एग्रीमेंट की तो जाती है, यानी एग्रीमेंट करके उन लोगों को 150-200 बंदों को वहां पे लेके जाते हैं, फिर वहां पे बगैर चार्जिंग लेबर के, यानी उनको यानी पाँव से लेकर पाँव में वो उनको रस्सी बांध के उनको यानी एक बांधा जाता है, फिर उनको काम किया जाता है बगैर चार्जिंग। उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वहां फंस जाते हैं, ये 6 महीने साल 2 साल तक वो काम करते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता, बाहर रिश्तेदारों से कोई भी उनका यानी कांटेक्ट नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं से वो चीजें जो है कोई कोई काम बंदा उनका जो है सप्लायर होते हैं कोई वहां से चीजें लेने या जाने में वहां से कोई पता चल गया कि भाई यहाँ पे ये जुलम हो रहा है वो चीज हो रही है, फिर वो आवाज हम तक पहुंचता है। हम जो है अदालत के हिसाब से कोशिश करते हैं कि हम वहां से उनके अपना आवाज पहुंचाएं, यानी उनसे ऐसे ही बात करें, अगर वो उस बात में नहीं आते फिर हम अपना जो है कोर्ट का रास्ता अख्तियार करते हैं। कानूनी है, कानून ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल जो 11 है वो क्लियरली हमें बोलता है कि जो स्लेवरी फॉर लेबर है यानी प्रोहिबिटेड है, स्लेवरी जो है वो उसके हिसाब से क्लास 2 जो है उसमें ये चीज है कि वो जो ह्यूमन राइट से बिलोंग है उसको किसी को भी आप यानी फोर्सेबली विदाउट चार्जिंग के किसी को बांध के किसी से मजदूरी जो है वो नहीं करा सकते। तो उसपे अमल कराने के लिए हम अपना कोर्ट का जो है वो तरीके का अख्तियार करते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, कानून पे पिटीशन आईनी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल करते हैं, फिर वो जो इदारे होते हैं जो कानून लागू करने वाले इदारे वो हरकत में आ जाते हैं, फिर उनको नोटिस हो जाते हैं, फिर वहाँ के कोर्ट के आर्डर से वो उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट के पेश करने के बाद फिर उनको यानी चार्जिंग यानी मिल जाती है, उसके बाद उनको जो है بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بعد وہ کہاں جائیں، ان کے پاس یعنی ہاؤسز نہیں ہوتے، گھر نہیں ہوتے، یعنی پھر وہی زندگی ان کی سفر میں رہتی ہے، وہاں سے ایک جیل میں جو نجی جیل ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، پھر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں یعنی مسائل ہی مسائل ہیں، پھر ان کو بہت سی زندگی میں لائف میں جی فیس کرنا پڑتا ہے
تو ان کو فیس کر. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کس آپ فری میں یہ کام کرتے ہیں، تو کیا
جی میڈم
فری میں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ادارے بھی ہیں جو آپ کو آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور تب آپ اور پھر یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو آپ ابھی تک قانونی فری کنسلٹیشن دے کر آزاد کرا چکے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ نے آزاد کرایا ہے؟
جی میڈم، کافی ایسے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کے فورم ہیں، اس فورم پہ بھی جو ہے کبھی یعنی ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہوتے، وہ اپنے دوسرے ایشوز کو دیتے ہیں، کبھی ایسے کوئی ڈاکومنیشن کا خرچہ دیا، کبھی دیا کبھی نہیں دیا، یعنی ان کو ہم فورس نہیں کرتے کہ ہمیں آپ کو خرچہ دے دیں، یا یہ ایک ہیومن رائٹس ہے، سوشل ویلفیئر کا کام ہے، ویلفیئر کام کے لیے یہ بینگ اے ہیومن یعنی ہیومن رائٹس کا کام ہے، تو کافی چیزیں ہیں اس میں جو کمیونٹی ہے جو ہمیں وہاں آزاد کرائیں، جیسے اس میں کرسچن کمیونٹی ہے، یعنی اس میں ہندو جو کمیونٹی ہے، اس میں کافی مسلم کمیونٹی جو لوور یعنی کاسٹ ہے وہاں پہ لو کاسٹ والے وہ ہیں اس میں، جس میں جو ہے بھیل باغڑی اور معاشی ذات ہے، مسلم معاشی ذات ہے وہ ہے، کرسچن میں آ گئے تو بھٹی آ گئے اس میں کرسچن میں، اسے کافی لوگ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، وہ ایک دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اپنے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، مگر کبھی کبھی وہ پھنس جاتے ہیں، ان کو ایک کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ پہ کام کرے، پھر وہ اسے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ہتھیار کے زور پہ ان کو یعنی فورسلی باہر جانے نہیں دیا جاتا، پھر وہاں پہ ان کو قید کر کے وہاں سے کام لیا جاتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے سال تک ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ کرتے ہیں، ایکچولی اس میں بھی منع ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی بچہ جو ہے 14 ایئرس کا کے نیچے جو ایج ہے 14 ایئرس وہ کام نہیں کر سکتا کانسٹیٹیوشن میں، مگر یہ کیا کرتے ہیں ان کو بھی یعنی 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال والے بچے کو بھی یہ جو ہے لیبر کا کام لیتے ہیں،
تو کیا ان کو سزا بھی کوئی ملتی ہے؟ آپ نے کسی کو سزا دلوائی کچھ لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا؟
جی میڈم، اس میں فائن وغیرہ ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو سزائیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ جو کمپرومائز ہوتا ہے، چارجنگ وغیرہ جو پیسے ہوتے ہیں ان کے جو لیبر چارجنگ وہ لیتے ہیں، اور جو قیدی ہوتے ہیں باندھی ہوتے ہیں جو بندے ہوئے ہیں بندے، وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی وش ہوتی ہے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو چھوڑا جائے، آپ کیا کون سی سزا دی جائے، پھر وہ ایک فیک ڈاکومنٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کی تھی اور ہمارے سے اتنے اتنے پیسے لیے ہیں، اتنے اتنے یہ چیزیں لیے ہیں، اور یہ یعنی ہم سے پیسے لے چکے ہیں، پھر وہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندے جو ہیں وہ کافی کیسز چلے ہیں، وہ جو جن کو ہم چھڑواتے ہیں پھر وہ آ نہیں سکتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کورٹ میں آ کے ان ایسے کیسز کو جو ہے وہ فالو کریں، اس کیسز کو چلائیں، کیونکہ کیس ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان پہ چارج ان پہ آتی ہے، کیونکہ ایک کمپلینٹ ہو گیا اور دوسرا اپلیکنٹ ہو گیا، جب وہ بندے باہر آتے ہیں ان کے پاس دوبارہ کورٹ آنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ بےچارے وہ کیس کو فالو نہیں کر سکتے، ایکچولی یہ مسئلہ ہے.
تو کوئی یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے بھی کوئی ان کی مدد کی جاتی ہے؟
اور لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی نہ اسٹیٹ مدد کرتی ہے نہ کوئی کورٹ یا عدالت مدد کرتی ہے.
تو یہ بےچارے، ان کی کتنی تعداد ہوگی، آپ اگر سندھ کی بات کریں تو کتنے بانڈیڈ لیبر ہیں وہاں پر؟
میڈم تقریباً جو میں نے چھڑوائے بینڈ لیبر، جو میری تقریباً میری جو ایڈوکیسی میں جو اتنا پیریڈ گزرا ہے، تقریباً 800-900 یعنی 1000 تک یعنی تعداد ہے. اس میں کافی دوسرے وکلا ہیں، دوسری این جی اوز ہیں، وہ الگ یعنی ایک حساب ہے، وہ کتنے چھڑاتے ہوں گے وہ الگ ایک چیز ہے. قسم ہوتے ہیں ٹارچر، ایک فزیکلی ٹارچر ہوتا ہے، ایک مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے. مینٹلی ٹارچر مطلب یہ کہ دوسری دنیا دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور وہی کام دیا جاتا ہے، وہ کام جو ان کو فورسلی یعنی فورس گن کے اوپر کیا جاتا ہے، وہ 24 آورس مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے، مینٹلی ٹارچر ہے. دوسرا فزیکل ٹارچر یہ ہے کہ ان کو فوڈ جو ہے سپلائی نہیں کرتے صحیح طرح، کھانا टाइम पे मिलता नहीं, और उनकी एनर्जी और चीजें जो है दूसरी वो उनमें जिसम में नहीं जाती। ये है फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और दूसरी जो है मेंटली टॉर्चर, अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो ये एक जेल से भी बदतर जेल है। यानी 21st century, 18th century, 17th एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात कर रहे हैं,
तो ये मसला अभी तक मौजूद है। तो आप लोग वकला इससे आगे नहीं जा सकते कि कुछ और भी कर सकें? कौन करेगा इनके लिए, किसके पास हम जाएं?
हाँ मैडम, मैडम इनके लिए एक सेमिनार होना चाहिए, एक पूरा फोरम होना चाहिए इनके लिए। सिर्फ एक एडवोकेट, एक वकला जो है अपना एक हिस्से का काम कर रहा है, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, आप अपने हिस्से का काम करें, दूसरा हिस्से का काम करें, अपने अपने हिस्से का अगर हम काम करें तो भी ये यानी काफी इनपे जब्ते आसत है। मगर इसके लिए एक यानी सेमिनार होने चाहिए, एक फोरम होना चाहिए, एक्टिव फोरम जो इस पे काम करे, इस चीज को सुप्रीम तक लेके जाए, और इसके लिए एक अलग से कानून या उसमें तरमीम चाहिए। जो अगर ऐसा कोई बंदा या ऐसी निजी जेल में है, अगर ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये उनमें तरमीम करनी पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सईद मिर्जा साहब। आप सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और हैदराबाद में आप प्रैक्टिस करते हैं, और आप 1,000 जो लोग हैं बॉन्डेड लेबर या जबरी मशक्कत के लोग, उनको आजाद करवा चुके हैं।
ताजा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
तो अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ, और अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सरवन भील से, जो सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई लेबर विंग के सिंध की, और मरकजी लेबर कमेटी जो सिंध की है पीटीआई की, उसके भी ये रुकन है, मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद हैं और सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और ये मुफ्त या फ्री लीगल एड फराहम कर रहे हैं उन खानदानों को जो जबरी मशक्कत के शिकंजे में कसे जा चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवन भील साहब।
जी मैडम, वालेकुम सलाम।
सरवन भील, कुछ बताइए कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर जहाँ पर आपने काम शुरू किया सिंध में खास तौर पर, और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ के जो जबरी मशक्कत पे गिरफ्तार लोग थे उनको आपने फ्री लीगल एड फराहम कर उनको कानूनी तौर पर आजाद करवाया?
मैम थैंक यू, हम आपके शुक्र गुजार हैं, आपने बहुत सेंसिटिव इशू पे हमसे बात की है। हम बड़े फखर से कहते हैं कि हमने बरतानिया से तो आजादी ले ली है, बदकिस्मती है कि हम अभी अपने लोगों के पास आज भी गुलाम है, और ये सिंध के अंदर ज्योग्राफी लिहाज से हर इलाके की अपनी सिचुएशन है। सिंध के अंदर जिस जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ भी फ्यूडल सिस्टम आ गई है, जागीरदारना निजाम है, उन जागीरदारना निजाम की वजह से जो पसमानदा लोग हैं, खेती बाड़ी से वाबस्ता लोग हैं, उनके जो 70% लोगों का जो जरिया है माश वो एग्रीकल्चर से ज़राइत से है, उनके अंदर लोगों को बाकायदे निजी जेलों में कैद किया जाता है, जबरी मशक्कत ली जाती है और उनका कोई हिसाब किताब नहीं किया जाता। जिस तरह फसल अच्छी होती है हर साल की, फसल जमींदार ले जाता है, और उन गरीब बेचारों को ये भी इतनी आजादी नहीं कि वो अपने जो हकूक का फसल का जो आधा शेयर है उनके मतलब की भी वो किसी जमींदार से बात कर सके। बदकिस्मती ये कि मैं आपको अर्ज करता चलूं कि जिस तरह हमारे जो पसमानदा कमेटी में खुद भील हूं, और भी सिंध के अंदर जो खेती बाड़ी से वाबस्ता लोग हैं वो तकरीबन हमारे पसमानदा कम्युनिटी के दराड़ नसर के लोग हैं, जो सन ऑफ सॉइल धरती का असल वारस हैं, जिसमें कोली भील मेंगुआड़ ओड जंडावड़ा जोगी इस तरीके से जो हमारे मुसलमान भाई गरीब हैं, माची हैं, और भी मुख्तलिफ कम्युनिटियां हैं मुसलमान भाई की जो खेती से वाबस्ता है, ज़राअत से वाबस्ता है। अर्ज इन करोगे जिस तरह हमारे हर मसले की कोई कमेटी बनी हुई है, कोई मिनिस्ट्री भी है एग्रीकल्चर के हवाले से या ज़राअत के हवाले से, जो जो हम पाकिस्तान को चलाने वाली अहम हैसियत है उसके लिए, हारियों के लिए यहाँ पे सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, इसलिए वो वटेराशाही है, जागीरदारी निजाम है, वटेरों को आज भी जो निजी जेलों में कैद करके उनसे जबरी मशक्कत ली जाती है, और इवन इतने जिस तरह उनको बाकायदा उनसे छोटे बच्चे वो भी उनके पास माल मवेशी उनके चारते हैं, उनके बच्चों के लिए कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, कोई एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, और कोई साफ उनको पानी नहीं मुहैया होता। इस वजह से मैं अर्ज करूंगा हमने 1996 से हमने मरूम सर्गवासी हमारी, अभी तो उनको मरूम नहीं अमर कहते हैं, जो सदा अमर रहेगी मरूम आसमा जहांगीर साहबा, उनके साथ मिलकर हमने काम शुरू किया सिंध के अंदर, जिस तरह सिंध के अंदर बड़े बड़े अहम बढ़े रहे हैं, इन अहम जागीरदारों के निजी जेलों से कई खानदानों को रिहा करवाया, निजी जेलों से उनको निजी जेलों में कैद करके उनको जंजीरों से जकड़ कर उनसे जबरी मशक्कत ली जाती थी। 96 की बात कर रहा हूँ, जब ये मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं था, कोई दौर नहीं था, नहीं कोई सोशल मीडिया थी।
किस तरह उनको लीगल एड फ्री फ्राम करते हैं?
मैडम अर्ज करूँ की हम लोग जिस तरह, क्योंकि हम हमारी कम्युनिटी के जो हम डिविजन में पुखास में रहते हैं वहाँ पे, जी मैडम, इनके 13 अजला है, 13 अजला के अंदर जो हमारी पसमानदा कम्युनिटी उन लोगों तक वो लोग हमारे तक रसाई करते हैं, उनको पता है कि सोशल काम करने वाले हैं वडेरों से और ये अपने गरीब लोगों के लिए बात करते हैं। तो मैडम ये कभी हमारे अपना 491 CRPC का कानून बना हुआ है, वो आर्टिकल शीशन कोर्ट के अंदर, पहले हाईकोर्ट में था, अभी हाईकोर्ट ने पावर दे दी शीशन जज साहब को, उसके अंदर हम पिटिशन दाखिल करते हैं कि इन लोगों को नाक रोक नाक बंद किया गया है और इनसे जबरी मशक्कत ली जा रही है, जिसके तहत शीशन साहब कंसर्ट जो PS होती है, जहाँ जिस इलाके का SH होता है, उसको हुक्म करते हैं कि अपने लोगों को फैमिली को रिहा करके ले आओ। इस तरह वो सारी फैमिली आ जाती है, फिर कोर्ट के अंदर उसे बयानात होते हैं। हमारे पास मैडम बदकिस्मती है कि उनके बयानात भी होते हैं, वो लोग निजी जेल में कैद होते हैं, वो भी कहते हैं हमारे से जबरी मशक्कत ली जाती है, इवन इतने उनके जो बीमारी की वजह से उनको कोई फैसिलिटी हेल्थ की नहीं होती, और उनके बच्चे वगैरह भी फोत हो जाते हैं, वो भी अपने स्टेटमेंट बेचारे कहते हैं हमारे से ये जुल्म हुआ, जुल्म हुआ। ये वडेरे के पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लोग तो रिहा हो जाते हैं आखिर में। मैडम वो वडेरे जो है उसके जो घर का जो सामान वगैरह होता है, चार पहिया बर्तन और खाने पीने के बर्तन और को जोड़ने के लिए रलियां वगैरह होती है, वो उनके भी जमींदार मालिक बन जाते हैं। इस तरह भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के अंदर केस फाइल किए हैं, वो इसमें सामान न मिलने की वजह से एक बेचारा बच्चा फोत हो गया, छोटा बच्चा, 23 बच्चे थे, निजी जेल से हमने रेड कराए, टोटल 39 लोग थे, 23 बच्चे, 8 मर्द 8 औरतें। तो वडेर ने कहा कि सामान मेरा है, सामान की वडेर ने मालकी कर दी, सर्दी की मौसम थी, 3-4 माह पहले का वाक्य है, सामान न मिलने की वजह से वो बेचारे बेचारो मददगार, एक सर्दी की वजह से एक बच्चा भी फोत हो गया। इस तरह सेम सिचुएशन है। अभी रिसेंटली मैडम ये 16 तारीख को 16 मई को हमने एक निजी जेल से लोग रिहा करवाए, ये हमारा जो CPS जो आर्टिकल है आइन का कानून का जिसको मियां के असेंबली ने पास किया है वो 491, उसके अंदर बच्चे के लेबर भी आते हैं, जिस तरह जो पुलिस लोगों को ले जाके लॉकअप करती है उस पर भी 491 मैडम, ये इस पर भी हमने लोगों को रिहा करवाया बगैर SIR के, बगैर सिस्टम के, पुलिस की निजी जेलों से भी हमने लोगों को रिहा करवाया।
बेहद शुक्रिया सरवन भील, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urdu.voa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं डेविड दीवान मसीह, जो क्रिश्चियन फाउंडेशन के सरबराह हैं, फाउंडर हैं, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जबरी मशक्कत के में गिरफ्तार खानदान हैं उनको आज़ाद कराने के लिए अपनी एक मुहिम शुरू किए हुए हैं अपनी इस फाउंडेशन के तहत, और अब तक बहुत सारी फैमिलीज तक ये पहुंच चुके हैं और अभी इनका काम जारी है। हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त इनका काम किस मरहले पर है और ये क्या काम कर रहे हैं और इसमें क्या सक्सेस स्टोरी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम डेविड दीवान मसीह साहब।
जी, वालेकुम सलाम, कैसे मजाज हैं? ठीक हैं?
मैं ठीक हूँ। आप लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बताइए अपनी फाउंडेशन के बारे में और ये बताइए कि किस जज्बे के तहत आपने ये फाउंडेशन शुरू की और इस वक्त ये किस मरहले पर है आपका काम।
बड़ी मेहरबानी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक एक बड़े गरीब खानदान से है, मेरे वालिदैन गरीब थे, अनपढ़ थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमें सब बहन भाइयों को पढ़ाया और फिर वक्त के साथ साथ खुदा ने सर فرازی بخشی. تو میں اپنے دل میں گہرا بوجھ رکھتا تھا کہ میری طرح کے بے شمار غریب لوگ ہیں جو پستے چلے جا رہے ہیں, اور جب میں نے ہوش سنبھالی تو میں نے دیکھا کہ بھٹوں پہ اور ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ غلامی ہے. اور پھر میں نے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا اور میں نے سوچا کہ ایک پلیٹ فارم بنائے, اور ہم نے کرسچن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن تشکیل دی, اور پھر ہم نے ڈھونڈنے شروع کیے, اور ہمیں ساؤتھ پنجاب میں ضلع رحیم یار خاں میں اور ضلع گھوٹکی سندھ میں اور بھی علاقے ہیں, یہ پرابلم بڑا ہی وسیع ہے, اور وہاں پہ ہمیں ایسے خاندان ملے کہ ان کی کہانیاں سن سن کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کو 7-8 لوگ اپوائنٹ کیے ہیں ایک ٹیم کے طور پہ مختلف علاقوں میں, وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ایسے خاندانوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, لسٹ کر رہے ہیں, اور اس وقت تک ہم نے تقریباً 800 خاندانوں کو انلسٹ کر لیا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم چند مہینوں میں 1000 خاندان کو انلسٹ کریں اور پھر ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں. میں کامیابی اپنی یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ تو کیا مسائل آپ نے دیکھے جو ذمہ داروں کے پاس جو خاندان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, میرا خیال 5000 کے لگ بھگ پر منتھ, اور 12-12, 14-14, 16-16 گھنٹے کام لیتے ہیں, بڑی پور لیونگ کنڈیشن میں ہیں, اور پیسے کے حساب کتاب میں بھی وہ عجیب طریقے سے ان کا حساب کتاب رکھتے ہیں, بجائے کہ ان کا بوجھ ہلکا ہو ان کا ہر سال اس طرح کی کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ وہ ان کی آمدن سے ان کا خرچہ زیادہ بن جاتا ہے اور وہ اور زیادہ ڈیٹ کے نیچے پھنستے ہیں, اور یہ نسل در نسل ایسے لوگ چلتے آ رہے ہیں. اس بات نے ہمیں بہت ہی رنجیدہ کیا اور اس لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا.
تو آپ نے یہ بھی سوچا کہ جب آپ ان کو تلاش کر لیں گے اور ان کے مسائل کو دیکھ لیں گے تو ان کو آپ آزاد کرانے کے لیے پھر کیا آپ کے سامنے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, کس طرح آپ ان کو آزاد کرائیں گے؟
پہلی تو بات ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ اسٹیبلش کر لیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ان کی اپنی ویکنیسز ہیں ہم وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ ان ایریاز میں آپ خود اپنے آپ کو درست کریں, اور تیسری بات جو ہے وہ ہم ان کے لیے ممکن ہو تو کوئی ایکسٹرا انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہم کرنا چاہیں.
بہت شکریہ ڈیوڈ دیوان مسیح صاحب, آپ کرسچن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اور آپ ایگریکلچر سیکٹر میں جو لوگ جبری مشقت کے سلسلے میں گرفتار ہیں یا ان کے جبری مشقت ان سے لی جا رہی ہے ان کی بھلائی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جبری مشقت کے مسئلے کے بارے میں. اس مسئلے کے حل کے لیے نجی سطح پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں, حکومتی سطح پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس مسئلے سے جو لوگ آزاد ہو چکے ہیں اس وقت ہم آپ کو ان کی گفتگو سنوائیں گے. کچھ ایسے ہاری, کچھ ایسے جبری مشقت کے گرفتار لوگ جو اب قانونی جنگ لڑ کر یا ان کے لیے کسی نے قانونی جنگ لڑی اور وہ آزاد ہو چکے ہیں, ان کی گفتگو اب آپ تک پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے سنتے ہیں کہانی سندھ سے تعلق رکھنے والی نیرو کوہلی کی, جنہوں نے ایک عرصے تک جبری مشقت کا شکار رہنے کے بعد حیدرآباد میں انسانی حقوق کے کمیشن کی مدد سے آزادی حاصل کی, اور اس کے بعد انہوں نے جبری مشقت کے شکار افراد کو آزاد کرانے کی مہم شروع کی. اس وقت وہ گرین رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن حیدرآباد سے وابستہ ہیں, اور انہیں ان کی کوششوں پر غلامی کے خلاف کام کرنے والی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن فری دا سلیوز کی جانب سے فریڈرک ڈگلس فریڈم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. تو لیجئے ان کی باتیں سنتے ہیں جو انہوں نے بہت ہی سادہ لوہی سے ہمارے ساتھ کی. تو آپ خود کہاں کام کرتی تھی, آپ کس کے پاس کام کرتی تھی بانڈیڈ لیبر میں جبری مشقت میں؟
سلیمان بھٹی کا, عمر کوٹ ضلع کا. सुलेमान घाटी के पास काम करती थी, जिला उमर कोट था।
क्या काम करती थी?
हमसे मजदूरी पर दिहाड़ी पर करते थे, उसने बोला हमारी बनी की जो हमने फिर मिर्ची लगाई, कपास लगाई, कनकी लगाई, फिर हमारे को कुछ नहीं देने लगा, हमारे बच्चे भूख मरने लगे, तो मैंने सोच करके पिटीशन डाली, तो फिर शकील पठान ने हमारे को आजाद करवाया था।
किसने आजाद कराया आपको?
शकील पठान। शकील पठान
कैसे आजाद कराया?
जी उसने लेटर बना के पुलिस के पास भेजा, हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारे को रिहा करवाया था। पुलिस ने मेरे को बहुत मारा पीटा था, मैं बोतल फॉर्म खाने पर मेरे को मारा पीटा भाई आखिर थी वडेरे के पास और पुलिस वालों ने। मैंने बोला मेरी जान इधर चली जाएगी, इस वडेरे के तहत में मैं नहीं जाऊंगी। फिर पुलिस ने बोला भाई ये नहीं मान रही है, ये चली जाएगी। फिर पुलिस ने बोले भाई जाओ जिधर जाओ आप जाओ। फिर हमने उधर से हमारे पास किराया नहीं था, फिर एक बंदे के पास हमने मांगा, उसने बेचारे हमारे को गाड़ी भेजी थी और उस गाड़ी में हम मातली खरीदने आए थे, तब तो हम मातली खरीदने से आवाजी की मजदूरी कमा के खा रहे थे। फिर उसके बाद मैं लोगों के लिए सोचा, मैंने बोला हमारे बाल बच्चे भूख मर रहे थे, हमारी बेटियों जो जवान जवान वगैरह लेके जाता था उससे दूसरों से ये जुलम हो रहा है। फिर मैंने आवाजी का सिलसिला शुरू किया, मैंने अभी तक शुरू कर रही हूँ, अभी तक मेरी जंग जारी है। मैंने बोला मेरी जिंदगी है जब तक मैं बड़े आधार कराती
रहूंगी। तो अब आप खुद क्या करती हैं? अब आप अपना गुजारा कैसे करती हैं?
मैडम मैं दिहाड़ी पर काम पर जाती हूँ।
क्या काम करती हैं?
भिंडी की चुनाई करती हूँ, मिर्ची की चुनाई करती हूँ, बूटी निकालती हूँ, खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
अच्छा खेती बाड़ी। आपकी उम्र क्या है?
मेरे समझ में 55, चुनावी कार्ड में 55 लिखा है।
अच्छा ठीक है।
हाँ दिहाड़ी पर जाते हैं, शाम को हमारे को पैसे देते हैं, फिर हम बच्चों के लिए खाना पीना लेके आते हैं।
कितने बच्चे हैं आपके?
मेरे 7 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। हम लोग अवार्ड मिला था, अमेरिका में अवार्ड मिला था, मेरे को 17 लाख रुपए मिले थे, वो तो मैंने बंदे अलर्ट करवाए, हमने कुछ नहीं बनाया उसमें तो।
अच्छा अमेरिका ने आपको अवार्ड दिया, क्यों दिया?
डॉलर लेबर के ऊपर काम करती थी, वो मेरी अच्छाई देखी, मेरी सच्चाई देख के मेरे को दिया है। आप भूखी प्यासी चलती है, आपके पास दो रुपए होते हैं, वो तो लोगों के ऊपर खर्चा करती है, इसी वजह से मेरे को अवार्ड दिया था। मैडम
अमेरिका आई थी आप?
जी हाँ मैं गई थी, लास्ट वाशिंगटन गई थी, न्यूयॉर्क गई थी।
अच्छा तो फिर कैसा लगा अमेरिका?
वो तो बहुत अच्छा लगा, वो तो भाई बहुत प्यार वाले बंदे हैं अमेरिका के,
तो
मजहब नहीं देखते, रात में देखते, हमारे साथ बैठ के खाना खा लेते। हमारी जंग है जब तक जिंदा हूँ, ये मेरी जंग जारी है, मैं कभी नहीं हटूंगी, लोग जितने भी दुख में होंगे मैं छोड़वाऊंगी।
जी वीरो कोहली की बातें आपने सुनी और अब कुछ और ऐसे अफराद की गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे जो जबरी मुशक्कत के शिकंजे से आज़ाद हो चुके हैं, कानूनी जंग लड़कर, या उनके लिए किसी ने मदद की, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की उनको आज़ाद कराने के लिए। तो लीजिए सुनिए।
जी मैं राजू कोहली बात कर रही हूँ।
राजू कोहली आप बताएं कि आप पहले कहाँ काम करती थी और अब आप कैसे आज़ाद हुई, किसने आपको आज़ाद कराया?
पहले तो मैं थी जमींदार वडेरा के पास, जो है खेती बाड़ी का काम करता था, जो हरिपुर वाला। तो अभी तो ये 30 साल हुआ है, तो मैं जो ये आर्डर लेके तो वडेरा बहुत सारा जुल्म करता था।
क्या जुल्म करता था?
जी जो जी वडेरा खाना पीना नहीं देता था, सारा दिन काम ले बोलता था काम करो, ये मिर्चियों के गुड़ का खेती बाड़ी का जो काम है ना। तो उसने बोले वडेरा बोलता था बीमारी सीमारी को जो बहुत बड़ा होता था ना, तो ये वजह ये नहीं देता था हमारे के, कोई पैसा नहीं देता था, तो वो बोलता था हम आपके ऊपर कर्जा है बहुत सारा। तो उसके बाद तो ये लेटर लेके हम एरिया से आए थे, तो ये आजाद कराए। अभी तो मैं खुद दूसरा लोग है ना उसके मैं आजाद कराती हूँ। अभी सारा मालूम है तो बेचारा अभी तो खास है, बहुत सारा जो वडेरे के जेल में निजी जेल में है बहुत सारा, वो पैसे जमा होंगे, मैं हम थे ना जैसे वो दूसरा बने।
आप खुद क्या करती हैं आजाद होने के बाद, कहाँ रहती हैं, कैसे गुजारा करती हैं, आपके कितने बच्चे हैं?
मैं बैठी हूँ, जी हाँ मैं बैठी हूँ अहमदाबाद, ये जो कॉलोनी है ना ये हैदराबाद में है।
अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या करती हैं आप, कैसे गुजारा करती हैं आजाद होने के बाद?
अभी मैं जो ये अभी भी ये मजदूरी पे जाती हूँ, जो वडेरे के पास कर रहा जब बोलता था ऐसे नहीं हूँ, जो किसी का काम होता है तो कोई वो जाती हूँ, तो ये खेती बाड़ी का काम करता है। दूसरा तो हमारे के कोई इतना लिपट नहीं कराता है, तो उसके बाद क्या करो, ये खेती बाड़ी का काम करता है अभी, तो रुई की चिंताई होती है, कणकों का लबारा होता है।
लॉकडाउन में कैसे गुजारा हो रहा है?
तीन बेटा है और दो बेटियों है।
तो आपको रहने की जगह दी है, आपको रहने की जगह इन्होंने दी है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है?
जी हाँ, जो ये ग्रीन आए, ग्रीन ऑफिस वाला है
ना,
इधर वाला मतलब कौन है, उन्होंने तो इस्लामाबाद जो फौजिया डायरेक्टर थी उसने बनी है जी, ये 16 एकड़ हमारे के लेके दिए अभी, तो उसमें बेटी हूँ।
क्या लेकर दिए? नहीं, आपको क्या उन्होंने घर दिया है रहने को?
नहीं, घर नहीं दिया है, जो प्लाट है ना वो लेके दिया है।
तो उस प्लाट में अभी आप नहीं रहती?
उस प्लाट में मैंने वहाँ पे जब प्लाट लेके दिया ना वहाँ पे मैं बैठी हूँ।
तो आपने खुद ही फिर झोपड़ी बना ली है उस प्लाट पर?
जी हाँ।
तो कुछ बताएं कि वो आप पर क्या जुल्म करता था जो पिछला जिम्मेदार था, मारता पीटता भी था?
जी हाँ, बहुत सारा जुल्म करता था वो, जो कभी जो लड़कियां थी ना तो वो बोलता था कि इसकी शादी कराने के लिए नहीं देता था, उसने बोला ये शादी नहीं करो, ये सारा जो हमारी खेती बाड़ी का ये जो काम करो, किसी स्कूल के स्कूल नहीं जाना देता था, तो वो बोलता था लड़का है उसके बोलो तो हमारा जो ये धराड़ दे के उसका माल चारे, जो जानवर है ना जो मेसी है ना वो वगैरह बोलता था उसका घास करो, जो ये काम नहीं करो, स्कूल नहीं जाने जो बेटों के सारा दिन हमारी हाजिरी में रहो।
तो मारता पीटता भी था बच्चों को आपके?
जी हाँ। नहीं देता था, जो जब जाता था ना तो वो बोलता था ये अभी खाना पीना नहीं है, वो ऐसे ही बोलता था कि हमारा कर्जा है 4-5 लाख रुपया, ये हमारे के दे दो फिर आप चलो यहाँ था, ऐसे ही बोलता था।
तो आपने कर्जा लिया था 4-5 लाख उससे?
नहीं दिया था मैंने, उसने बोला पहले हमारे किसी खेती बाड़ी करो, बाद में जो ये आधी बनी आधो तो हो जाएगी, तो फिर जो जब फसल निकाल होता था ना तो उसने बोले आपके मैं पैसा देंगे, आप ये खेती बाड़ी हमारे पास ये काम करो। मेरा जो बच्चा है ना एक छोटा था जो वडेरे के पास जब तो दो एक लड़की एक लड़का था, उसके बेचारों के स्कूल नहीं जाना देता था, दो है जो दो अभी यहाँ का है ना वो पढ़ रहा, एक 7th क्लास में है, 7th में एक 8th में।
उनको फोन देना अपने बच्चों को।
हेलो जी।
हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? हाँ प्रेमचंद। हाँ तो प्रेमचंद आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
मैं 8th क्लास में।
तो जो आपका जो जब आप कैद, हाँ जब आप काम करते थे उसके पास जिम्मेदार के पास, तो वो क्या जुल्म करता था आपके साथ, क्या सख्ती करता था?
वो हमारे को वो एकदम एक खाना नहीं दे रहा, खाना नहीं देते थे, जीरों में बांधते थे हमको, हमको कहते थे कि ये काम स्कूल नहीं जाओ, हमारी बेटे जाओ।
आप फिर भी स्कूल जाते थे, वो आपको मना करता था?
चुप के जाते थे, स्कूल वगैरह देखना ले हम ऐसे जाते थे वहाँ पर, हमको जब आप खेती बाड़ी करते थे तब स्कूल वगैरह वो नहीं जाने देता था, जब हम वहाँ से आजाद होके आए ना फिर हम जाते थे।
तो कितने साल हो गए आजाद हुए भी आपको?
15 साल मेरे को हुए हैं, 30 साल आजाद होने के।
जी मेरा नाम प्यारो है, मैं पहले एक जमींदार के पास हम उमरकोट में रहते थे, जिसने हमारे ऊपर जो ना हमारा हिसाब किताब वगैरह नहीं किया और तशद्दुद वगैरह करते थे, मारते थे पीटते थे। जब हमने कोर्ट में पटीशन दाखिल की तो उनको जब पता चल गया, उन्होंने हमें अगवा करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था और वहाँ पे हमारे ऊपर तशद्दुद करते थे और मारते थे, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म होता था। फिर जी आज तंजीम वालों ने हमारे ऊपर मेहरबानी की, वो आए और पुलिसों के साथ कोर्टों के साथ झगड़े किए और हमारे को आजाद करवाया, आजाद करवा के हमें आजाद नगर में चंडो हैदर के साथ आजाद नगर कॉलोनी है वहीं पे छोड़ा और हमारे को प्लाट भी दिए और भी हमारी बहुत मदद की उन्होंने, अभी भी हम उनके तावन से रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं, अपनी रोटी रोटी कमा के खा रहे हैं।
मेरा नाम सत्या दीदी है। हम जैसे बदीन में रहते थे, किसी जिम्मेदार के पास हम उनके हारी थे। मेरा ससुर, मेरा शौहर, मेरे देवर, हम तकरीबन 4-5 घर थे। तो उन लोगों के जैसे हम हारी थे, हमसे दिन में जमीनों में काम भी करवाते थे और औरतों से अलग काम करवाते थे, मर्दों से अलग काम करवाते थे, रात को भी वो जैसे कभी कभी हमारे से काम करवाते थे और हमारे साथ बहुत ही ना जल्दी करते थे, ना बीमारी के लिए कोई पैसा देते थे, ना कोई शादी ब्याह के लिए जाने देते थे। हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमें तंजीम वालों ने वहाँ से आज़ाद किए सन 2012 में। उसके बाद में हम जैसे आजाद नगर में साल 1.5 साल तक रहे। फिर हमने बस अपनी रोजी के लिए, अभी हम कराची शिफ्ट हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम कमाते हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं, शुक्र है अल्लाह का।
अच्छा, मेरा नाम सिंह जी है। मैं 2009 में मुर्गी फार्म पे काम करता था और मेरा 13 हाली था। अच्छा, 6,500 रुपये हमारी तनख्वाह थी। अगर उस टाइम मैंने जब मेरे 10 महीना पीछे वाला वो मेरी मजदूरी नहीं दी, अच्छा उसके वजह से मैं दरख्वास्त दी सेशन कोर्ट में मृत्यु का। उसमें से अभी जो हमारा उधर खानदान बैठे तकरीबन 400 खानदान पे है, वो हम आबाद करके उधर देते हैं और पहले से हम अभी तमाम खुश हैं। अगर जो अभी मैं तमाम खुश हूँ, इधर जो हमें देखा हूँ, जो शिक्षण देवी ने हमारे से कानूनी दी है उधर प्लेट में प्लेटफार्म पे।
मेरा नाम सुधीर है। हम 2005 में लाहौर में काम करते थे। हमारा भाई जो है, भाइयों के साथ में काम करता था। मेरे भाइयों को वहाँ दोनों को घूटे निकले थे। 2006 में जियादों वालों ने हमारी मदद की। हम वहाँ से निकले, अब हम देखे हमारे पिलार दिए हैं, काफी लोगों को दिए। हम हारी के अफसराबाद में रहते हैं। मेरी 48 साल उम्र है। हम अभी अपने बच्चों का सुकून से काम ले रहे हैं। हमने काफी लोगों को भी छुड़ाया है। मुश्किल था, मेरे भाइयों की जिंदगी इतनी तंग थी वहाँ लाहौर में। उन्होंने गुर्दे निकाले, फिर ये जाट वाले की मेहरबानी हुई, वहाँ हमारे को आजाद कराया। वहाँ हम आगे हैदराबाद सिंध में, सिंध वालों ने टनु हैदर में बाराम खान का बट्ठा था, उन्होंने हमारे को बेचा था लाहौर में। वहाँ हमारे को बेचा था, वहाँ से हम वहाँ रहते थे। फिर हमने बोला कहाँ जाए, मेरे भाइयों को दोनों को गुर्दे निकाले। फिर जाकर हमने जियाडों से रब्ता किया, फिर उन्होंने हमारी मदद की, हमारे भाई छुड़ाए, मेरे को छुड़ाया। फिर हमारे को प्लान लेके दिए हरिके में, इस्लामाबाद में। हम वहाँ बैठ के बच्चों को जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। अभी मैंने भी उन जियाडे को साथ काफी बंदों के घर छुड़ाए हैं। हम अभी अपने बच्चों का सुकून से काम ले रहे हैं। हमने काफी लोगों को भी छुड़ाया है। मुश्किल था, मेरे भाइयों की जिंदगी इतनी तंग थी वहाँ लाहौर में। उन्होंने गुर्दे निकाले, फिर ये जाट वाले की मेहरबानी हुई, वहाँ हमारे को आजाद कराया। वहाँ हम आगे हैदराबाद सिंध में, सिंध वालों ने टनु हैदर में बाराम खान का बट्ठा था, उन्होंने हमारे को बेचा था लाहौर में। फिर उन्होंने हमारी मदद की, हमारे भाई छुड़ाए, मेरे को छुड़ाया। फिर हमारे को प्लान लेके दिए हरिके में, इस्लामाबाद में। हम वहाँ बैठ के बच्चों को जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं।
ये थे पाकिस्तान में बॉन्डेड लेबर से आजाद होने वाले कुछ अफराद, जिनके तासुरात आप सुन रहे थे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
और अब आखिर में आपके लिए एक रिपोर्ट, जिसे मुदस्सर मंजर ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे सेहत WHO और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का कहना है कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन माँ से बच्चे को मुंतकिल नहीं होती اور کراچی میں گائنیکولوجسٹ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی سابق صدر ڈاکٹر سمرینا ہاشمی کہتی ہیں کہ ماں بننے والی خواتین کو بھی وہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی جو دوسرے لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اختیار کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر سے ان کی گفتگو.
مجھے یہ بتائیے کہ COVID-19 اور ایک عورت جو کہ ماں بننے والی ہے, اس کی صحت کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, ایز سچ تو اس کو وہی تقریباً خطرات ہیں جو کسی بھی ایک عام آدمی کو ہیں, کیونکہ اس کو کاف ہوگی, اس کو بخار ہوگا, یہ سب چیزیں ہوں گی. دا اونلی تھنگ از کہ اس کی امیونٹی کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر ریزسٹنس کم ہوا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک اور زندگی کو پال رہی ہوتی ہے, تو وہ بیمار زیادہ ہو کے اور اٹ از اے پاسبلٹی کہ وہ اس کی ڈیتھ آسانی سے ہو جائے. آلدو ایسی کوئی چیز ہمیں اسٹڈیز میں ابھی تک ملی نہیں ہے, تو اس لیے کوئی ایکسیپشنل پریگننٹ عورت کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر ابھی تک جتنی اسٹڈیز آئی ہیں اس کے اندر فیٹس کو بھی ٹرانسفر نہیں ہوتا وائرس, جو بیبیز ہیں وہ افیکٹڈ نہیں نکلے ہیں. تو جو 3 بیبیز افیکٹڈ نکلے تھے وہ بھی یہ پتا چلا کہ انہیں تھرو نرسری ٹرانسفر ہوا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ناٹ تھرو مدر. پھر دوسرے اچھی بات یہ ہے کہ اف دا مدر از کووڈ پازیٹیو تو وہ بچے کو فیڈ بھی کر سکتی ہے, ملک کے تھرو بھی اس کے نہیں جاتا وائرس. یہ اللہ میاں کی ایک بلیسنگ ہے کہ بچے کو ماں دودھ پلا سکتی ہے اور اس کے تھرو نہیں جاتا. اگر صرف یہ کہ ماں ماسک پہنے رہے, اپنے ہاتھوں کو کور رکھے, گلوز پہن لے یا ہاتھ اچھے سے واش کرے بچے کو ہولڈ کرنے سے پہلے, تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. تو کافی اچھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ماں اور بچے کے درمیان کہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو اب یہ ہے کہ اگر پریگننٹ ہونے کے بعد کووڈ ہو جائے کسی ماں کو تو بچے کو ٹرانسفر ہوتا ہے یا نہیں؟
نہیں, ابھی تک جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کے حساب سے بچے کو ٹرانسفر نہیں ہوتا, کیونکہ جو اتنے پیدا ہوئے ہیں بچے ان میں کسی میں بھی وائرس نہیں ملا. 3 میں ملا تھا, وہ بھی یہ پتا چلا کہ تھرو پلیسنٹا ٹرانسفر نہیں ہوا, کیونکہ ہوتا تو پلیسنٹا میں بھی ملتا. تو پلیسنٹل ٹرانسفر نہیں ہے, تھرو مدر نہیں ہوا تھا, وہ تھرو انوائرمنٹ گیا تھا ان بچوں میں. میٹرنل ٹرانسفر نہیں ہے اس کے اندر, کوئی بھی نہ مدر کے بریسٹ ملک سے آتا ہے نہ تھرو پلیسنٹا بچے میں جاتا ہے, تو میٹرنل ٹرانسفر نہیں ہوتا. دس از اے بلیسنگ فرام گاڈ.
اس کے بعد اگر ایک چھوٹے بچے کی ماں کو کچھ تکلیف ہو جاتی ہے کووڈ کی,
جی,
تو
جی,
اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ چھوٹا بچہ ہے, اسے اگر وہ الگ نہیں رکھ سکتی خود سے تو پھر؟
نہیں, بالکل بھی نہیں رکھ سکتی, وہ اپنا ماسک کور رکھے نا. دیکھیے, کووڈ کے اسپریڈ ہونے کے کیا کیا ذریعے ہیں, جو ہمارے منہ سے اسپرے نکلتا ہے یا ناک سے اسپرے نکلتا ہے اس سے اسپریڈ کرتا ہے نا, یا جو ہم بات کرتے ہیں ہمارے منہ سے تھوک نکلے گا اس سے اسپریڈ کرے گا. تو ماسک سے اپنی ناک اور منہ کو اگر ماں کور رکھ رہی ہے اور ہاتھ اچھے سے اپنے واش کر رہی ہے, تو اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا ٹرانسفر ہونے کا. بچے کو کیسے ماں سے آپ الگ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. تو بالکل, ماں دا مدر کین اٹینڈ دا بیبی, بریسٹ مدر کین فیڈ دا بیبی.
اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی سٹل برتھ ہو جائے کووڈ کی وجہ سے, کیا اس کا امکان ہے؟
ابھی تک تو اسٹڈیز ایسی کوئی پروو نہیں ہوئی ہیں, کوئی بھی اسٹڈی ابھی تک نہیں آئی ہے, کیونکہ پلیسنٹل ٹرانسفر نہیں ہو رہا نا. ابھی تو اسٹڈیز آئیں گی, کچھ بھی پروون نہیں ہے نا ابھی. پریگننٹ عورتیں تو ویسے ہی جو پاپولیشن ہے اس کا اتنا بڑا حصہ تو نہیں ہے, تو ابھی اسٹڈیز آئیں گی تو پتا چلے گا. اٹس ناٹ کلیئر.
ٹھیک ہے,
سن رہے تھے کہ اسٹل برتھ ہوگی بٹ اٹس ناٹ پروون.
تو اس کے علاوہ مطلب اب دیکھیں نا, ایک تو وہ کنٹینیوسلی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی ایسی خواتین, اگر لاک ڈاؤن ہے کچھ ہے تو کیسے اپنا خیال رکھ سکتی ہیں؟
اپنا ہم یوزلی دیکھیں, جو میرے پیشنٹس ہیں میں انہیں وہ میرے مجھ سے واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کرتے ہیں. سب کے پاس میرا واٹس ایپ ہوتا ہے میری پریگننٹ عورتوں کے پاس, اور دے کین ایزیلی کانٹیکٹ میں, وہ مجھے اپنی تصویر بھیج دیتے ہیں, اپنی انویسٹیگیشن بھیج دیتے ہیں اور میں ان کو مشورہ دے دیتی ہوں. باقی یہ کہ جب وہ کلینک میں ان کا چیک اپ ہوتا ہے تو وہ پراپر پریکاشنز لے کے آتے ہیں نا, ماسک پہن کے آئیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پورا کور کر کے آئیں, جا کے گھر اپنے کپڑے چینج کریں, وہ کپڑے دھلنے ڈال دیں, باہر کے کپڑے گھر کے اندر نہیں استعمال کریں, یہ سب احتیاطیں کرتے ہیں تو بیمار نہیں ہوتے. اور اسپیسنگ کر دیں, دور دور پیشنٹس کو بٹھائیں, मेरे पास तो रेगुलर चेक्स हो रहे हैं पेशेंट्स के, माशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पेसिंग की हुई है, 4 हफ्ते में देखना है तो उसको 8 हफ्ते में देख लेते हैं।
एक ऐसा वक्त आ जाता है कि फॉल्स पेन्स होने लगे फर्ज करें आप, या कोई बच्चे की वो मूवमेंट उन्हें नहीं फील हो रही है, या कोई ऐसा खतरा महसूस होता है, तो आपके ख्याल में उनको इंतजार करना चाहिए फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में
पास आना होता है ना। देखिए कोविड और नॉट कोविड, ठीक है, बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है या कम हो रही है, ये तो एक वार्निंग साइन है ना, ठीक है, देन पेशेंट हैज टू कम टू द हॉस्पिटल, क्योंकि उसके बगैर तो कहीं चेक नहीं हो सकता ना। हाउ कैन यू चेक द बेबी, सीटीजी होगा, स्टाफ हार्ट सुनेगा, नर्स हार्ट सुनेगी, ठीक है, हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो सकता है अंदर वो ब्लीड कर गई हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो शी हैज टू बी इन द हॉस्पिटल कोविड और नो कोविड।
अब जिनकी सर्जरी होती है, जो सी सेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी माओ के लिए भी कोई खास आप केयर बताती हैं इन हालात में? वैसे तो होती ही है,
डिलीवरी तो डिलीवरी होती है ना, तो वो तो एक ही तरह से ट्रीट की जाती है, वही डाइट होती है, 4 ग्लास दूध पियो, 2 अंडे खाओ और प्रोटीन्स लो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकेंड क्लास प्रोटीन, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी ईटिंग करोगे तो दूध अच्छा आएगा माँ का बच्चे के लिए। सो दीज आर द थिंग्स, माँ अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है तो एक वजाइनल डिलीवरी की माँ और एक एब्डोमिनल डिलीवरी की माँ आर द सेम। इसमें तो मेन तो हमें हॉस्पिटल स्टाफ को एहतियात करनी पड़ती है ना, कि हम अपना पूरा कवर रखें, पेशेंट को कुछ ना लगने दें, देन स्टेरिलाइजेशन, पीपीज अपने जो प्रॉपर ड्रेसिंग में हो, हम ब्लड हमें ना लगे, ये सब हमें एहतियात करनी होती है। मदर्स आर द सेम।
डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं सकती है, माएं घर में ही होती हैं,
वो तो खैर बहुत ही होती हैं
जी। और आजकल के हालात में जबकि एक वबा फैली हुई है, ऐसी माओं के लिए आप क्या कहेंगी?
देखिए, वो औरतें जो अस्पताल नहीं जा सकती हैं, उनके लिए सबसे अहम चीज ये है कि दवाई अहम नहीं है, डाइट अहम है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम अज कम घर में अपनी गिजा का ख्याल रखे, यानी हाई प्रोटीन डाइट, दूध जरूर ले ताकि उसकी अपनी हड्डियां कमजोर नहीं हो और पैदा होने वाले बच्चे को भी कैल्शियम जाता रहे, उसकी हड्डियां कमजोर नहीं हो। अब हमें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से मिलेंगी? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स में हमारा दूध, दही, अंडे, फिश और चिकन। सेकेंड क्लास प्रोटीन्स में दालें और बीन्स, छोले, काले चने, ये सब आते हैं, ठीक है। तो जो लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते मुर्गियां और अंडे खाने, वो दालें खा लें, छोले खा लें, काले चने खा लें, बीन्स खा लें, उससे भी उनको प्रोटीन्स इसी तरह मिलेंगे। तो प्रोटीन्स का ख्याल रखे पेशेंट अपनी। सेकेंडली, वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाएं, 2 प्याले कम अज कम सब्जियों के खाएं। देखिए, हर घर में सब्जी बनती है, नहीं सब्जी आपके घर में बनी तो आप उसको काट लें, सलाद के पत्ते काट लें, आप बंद गोभी काट लें, ठीक है, प्याज ले लें, टमाटर ले लें, हरी मिर्चें ले लें, जितनी सब्जी, बैंगन आए हुए हैं, बैंगन को सेक लें तवे के ऊपर, लौकी का रायता बना लें, ये तो चीजें हमारे घरों में बनती है ना रोज, तो ये सब चीजें तो हम आराम से 2 मिनट में बना सकते हैं। ये सब्जी हो गई हमारी, हमारी दालें हो गई, पानी प्रेग्नेंट औरतें अपने घर में पी सकती हैं, बॉयल करके पानी पिए ताकि उससे आपके गुर्दे खराब नहीं हो। कम अज कम 3 से 4 लीटर पानी आप इस गर्मी में जरूर पिए ताकि आपके गुर्दों में पथरी ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत के गुर्दों में पथरी बहुत आसानी से बनती है, तो ये बहुत जरूरी है। वॉक करें, हर खाने के बाद 10-10 मिनट वॉक करें ताकि आपका खाना हजम हो। लेट नाइट खाना बहुत हैवी मत खाएं, खाने को डिवाइड करें, 5-6 दफा में थोड़ा 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 करके खाएं। 2 बेसिक उसूल याद रखें, पेशाब पीला ना होने दें और पेट को खाली मत रहने दें। तो अगर इन चीजों पे औरतें अमल करेंगी तो बहुत ही अच्छी तरह हेल्दी प्रेगनेंसी अपनी लेके चलेंगी, अगर खाली दवाएं खाती रहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा।
एक खबर ये भी है कि आबादी बढ़ जाएगी, एक खबर ये भी है कि हो सकता है ना हो, पता नहीं आपके क्या कोई फिगर्स हैं आपके पास?
कंसेप्शंस तो बहुत होंगी, तो अब जो दिसंबर बर्थ्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा होंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीना हाशमी, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, बेहद शुक्रिया आपका। कराची से ये थी डॉक्टर समरीना हाशमी, जो गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सदर रह चुके हैं। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इस
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24